जरा कल्पना कीजिए कि मतलब कोई इंसान दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों से घिरा हुआ है।
हाँ, ऐसी ताकतें जिनके पास असीमित संसाधन हैं।
बिल्कुल। और अचानक कोई आकर उस भारी भीड़ के बीच खड़े होकर ये घोषणा कर दे कि इन सारी ताकतों पर भरोसा करना एकदम बेकार है।
अच्छा।
क्योंकि इन सब की असली कीमत एकदम शून्य है, मतलब जीरो।
ये तो मतलब किसी को भी चौंका देगा,
है ना? हमारी इस विशेष गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कोई आधुनिक दर्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगभग 3000 साल पुराने एक दस्तावेज यशाया के अध्याय 22 और 23 पर बात करेंगे।
जी, और हमारे पास डॉक्टर जॉन ऑसवाल द्वारा इन्हीं अध्यायों पर दिए गए व्याख्यान के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं।
सही कहा। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे ये पुराना संदेश आज भी प्रासंगिक है। मतलब क्यों इंसान को दुनिया की ताकतों और धन दौलत पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
परत को उधेड़ रहे थे। इंसान की फितरत है कि वो उन चीजों में सुरक्षा खोजता है जिन्हें वो देख सकता है,
जैसे ऊंची दीवारें या हथियारों के जखीरे।
एकदम सही। या फिर बड़े बैंक खाते। डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि यशाया ने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न स्थापित किया है जो बताता है कि किन चीजों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्योंकि स्रोतों के अनुसार पिछले कई अध्यायों में यशाया ने एक एक करके उस समय की महान ताकतों को वैचारिक रूप से ध्वस्त कर दिया था।
जी, उन्होंने साफ कर दिया कि बेबीलोन का वो महान गौरव, मोआब का घमंड और सीरिया की जो चतुर कूटनीति थी,
और मिस्र के संसाधन भी,
हाँ, वो सब अंततः शून्य के बराबर है। गणित का एक बहुत ही सीधा सा नियम यहाँ लागू होता है, शून्य को कितनी भी बार गुणा किया जाए परिणाम हमेशा
शून्य ही रहेगा।
बिल्कुल। बेबीलोन की भव्यता शून्य है, मिस्र की संपत्ति शून्य है, इन सबको मिला भी दें तो भी कुल योग शून्य ही निकलेगा।
लेकिन यहाँ ना कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। मतलब बाहरी ताकतों को शून्य बताने के बाद यशाया अचानक एक ऐसे राष्ट्र की ओर उंगली उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
हाँ, और वो राष्ट्र है खुद उनका अपना ही देश यहूदा।
सोचिए, एक पैगंबर अपने ही लोगों के बीच खड़े होकर कह रहा है कि वे लोग भी बाकी दुनिया से कुछ अलग या बेहतर नहीं है।
डॉक्टर ओसवाल्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये एक असाधारण साहस का काम था। मतलब यहूदा के लोगों ने यशाया को इसके बाद भी जीवित कैसे छोड़ दिया, ये अपने आप में एक आश्चर्य है।
ये तो वैसा ही है जैसे कोई बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर आपकी कंपनी में आए
और एक शानदार प्रेजेंटेशन दे।
हाँ, और डेटा के साथ बताए कि कैसे आपके सारे विरोधी बर्बाद होने वाले हैं। पूरा हॉल तालियां बजा रहा है और तभी वो स्क्रीन बंद करे, सीधे आपकी तरफ देखे और कहे, और तुम्हारी कंपनी का भी दिवाला निकलने वाला है।
अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका है।
बिल्कुल।
यशाया इस झटके को और गहरा करने के लिए अध्याय 22 में एक विशेष वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। वैसे दर्शन की घाटी या वैली ऑफ विजन कहते हैं।
वैली ऑफ विजन, ये नाम ही थोड़ा अजीब लगता है, एक तरह का विरोधाभास है ना?
एकदम सही पहचाना आपने, ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष है।
क्योंकि अगर किसी को दूर तक देखना हो, कोई विजन चाहिए, तो वो किसी पहाड़ की चोटी पर जाएगा ना?
घाटी में रहकर तो दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है।
जी,
वहां तो सिर्फ आसपास के पेड़ ही दिखाई देंगे, और यही तो यशाया का व्यंग्य था।
अच्छा,
वे अपने ही लोगों से कह रहे थे कि वो घाटी में बैठे हैं और फिर भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है।
मतलब उनकी सोच बहुत ही अल्पकालिक या शॉर्ट साइटेड हो चुकी थी।
हाँ, वे पेड़ों की वजह से पूरा जंगल नहीं देख पा रहे थे।
तो ये अल्पकालिक दृष्टि असल जिंदगी में कैसी दिखती है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा गहराई से जाना होगा। डॉक्टर ओसवाल्ड के नोट्स हमें 701 ईसा पूर्व मिले जाते हैं।
जी, ये वो समय था जब असीरिया के सम्राट सचेरीब ने यहूदा पर एक भयानक हमला किया था।
और वो हमला कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि असीरियाई सेना ने यहूदा के 46 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था।
यहाँ तक कि शक्तिशाली लाकीश का किला भी गिर चुका था।
हाँ, और हजारों लोग मारे जा चुके थे। पूरे देश में सिर्फ यरूशलेम बचा था।
जी।
जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। हालात बिल्कुल निराशाजनक लग रहे थे।
लेकिन तभी एक चमत्कार होता है।
असीरियाई सेना यरूशलेम वो छोड़कर अचानक पीछे हट जाती है।
स्रोतों में जिक्र है कि शायद मिस्रियों के आने की खबर से या फिर रातों रात कोई आपदा आने से उनके 185,000 सैनिक मारे गए।
कारण जो भी हो, लेकिन मौत का साया अचानक टल गया।
और इसके तुरंत बाद यरूशलेम के लोग अपनी छतों पर चढ़कर जश्न मनाने लगे, मतलब खाओ पियो और मौज करो।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव मनोविज्ञान कैसे काम करता है। वे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने अपने दम पर कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो,
जबकि वो भूल गए थे कि उनका पूरा देश जलकर राख हो चुका है।
बिल्कुल, पूरा बुनियादी ढांचा तबाह हो गया था, लेकिन वे बस इस बात से अंधे हो गए थे कि उनकी जान बच गई।
लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है।
बताइए।
मतलब मौत सच में उनके सिर पर मंडरा रही थी, है ना? और एक चमत्कार हुआ। ऐसे में एक गहरी सांस लेना और जश्न मनाना तो इंसान का स्वाभाविक स्वभाव है। क्या यशाया बहुत ज्यादा निराशावादी नहीं हो रहे हैं?
ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ट यहाँ यथार्थवादी खुशी और भ्रमित खुशी के बीच एक लकीर खींचते हैं।
यथार्थवादी खुशी?
हाँ, यशाया खुशियों के खिलाफ नहीं थे। मुद्दा ये था कि लोग अपनी भयानक सच्चाई से भागने के लिए इस जश्न का इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर ऑसवाल्ट एक सेनापति का उदाहरण देते हैं।
कैसा उदाहरण?
मान लीजिए एक अनुभवी सेनापति को पता है कि युद्ध का अंत उसकी जीत में होगा, लेकिन क्या वो उन सैनिकों के लिए दुखी नहीं होगा जो रास्ते में माने जाएंगे?
हाँ, एक सच्चा सेनापति निश्चित रूप से उस भारी कीमत को समझेगा।
यशाया की स्थिति भी वैसी ही थी। उन्हें ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे पहाड़ की चोटी से देख रहे थे जबकि लोग घाटी में जश्न मना रहे थे,
क्योंकि यशाया भविष्य में 150 साल आगे देख सकते थे।
बिल्कुल, वे जानते थे कि ये एक पायरिक विक्ट्री है, ऐसी जीत जिसमें सब कुछ छिन जाए। वे देख रहे थे कि भविष्य में बेबीलोन आकर इस शहर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा,
क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई सबक नहीं सीखा था। लेकिन अगर भविष्य को नजरअंदाज करना गलत है, तो क्या खुद को बचाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाना भी गलत है?
आप राजा हिस्किया की बात कर रहे हैं ना?
राजा हिस्किया ने तो यरूशलेम को बचाने के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग के कदम उठाए थे, फिर भी डॉक्टर ऑसवाल्ट की नोट्स में उनकी एक बहुत बड़ी चूक का जिक्र है।
वो पूरा प्रसंग बहुत ही आकर्षक है। हिस्किया ने यरूशलेम की बाहरी दीवारों को मजबूत किया, और जहाँ लगा कि एक दीवार कमजोर है वहाँ उन्होंने दोहरी दीवारें बनवाई।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने घरों को तोड़कर उनके मलबे से दीवारों के बीच की जगह को भर दिया,
ताकि जब दुश्मन के भारी हथियार दीवार से टकराएं तो वो मलबा झटके को सोख ले। शानदार इंजीनियरिंग।
और पानी के लिए भी उन्होंने एक भूमिगत सुरंग बनवाई, ताकि शहर में पानी की कमी न हो।
पुरातात्विक दृष्टिकोण से आज भी वो सुरंग एक चमत्कार मानी जाती है।
यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। मतलब हिस्किया ने हर समस्या का एकदम सटीक और तार्किक समाधान निकाला, तो फिर इसमें परेशानी क्या की? यशाया उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं?
परेशानी उनके कामों में नहीं थी, परेशानी उनके रवैये में थी। यशाया कहते हैं कि उन्होंने ये सब किया, लेकिन अपने रचयिता से सलाह नहीं ली।
अच्छा, मतलब उन्होंने पूरी तरह से भौतिक चीजों पर भरोसा किया।
जी, उन्होंने ईंट पत्थरों और अपनी योजनाओं पर भरोसा किया, ईश्वर पर नहीं।
ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक लंबी सड़क यात्रा की बहुत बारीकी से योजना बनाएं, कार का तेल चेक करें, सारा सामान पैक करें,
लेकिन आप मैप देखने से ही साफ इनकार कर दें।
हाँ, या उस व्यक्ति से रास्ता पूछने से मना कर दें जिसने वो सड़क बनाई है। कार बेहतरीन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वे जा कहाँ रहे हैं।
एकदम सटीक उदाहरण है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि बाइबल का इतिहास कितना प्रामाणिक है।
वो कैसे?
डॉक्टर ऑसवाल्ट बताते हैं कि इसमें कोई सोने से मढ़े हुए दोष रहित नायक नहीं है सिवाय यीशु के। दाऊद हो या हिजकिया, सबके पास कमियां थी जो सच्चे इतिहास की निशानी है।
ये बात तो है। हिजकिया की ये आत्मनिर्भरता दरअसल एक बहुत गहरी और खतरनाक आध्यात्मिक बीमारी का लक्षण है।
बिल्कुल।
स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर विषय का जिक्र है, मृत्यु तक ले जाने वाला पाप। यह एक ऐसा पाप जिसे माफ नहीं किया जा सकता। लोग अक्सर इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्होंने अनजाने में कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये कोई ऐसी गलती नहीं है जो अचानक हो जाए। ये एक जानबूझकर किया गया इनकार है।
मतलब ये एक प्रक्रिया है।
हाँ, डॉक्टर ऑसवाल्ट इसे समझाने के लिए एक रेडियो रिसीवर का बेहतरीन उदाहरण देते हैं।
हाँ, वो संगीत वाला उदाहरण।
जी, मान लीजिए कमरे में हर तरह का खूबसूरत संगीत बज रहा है, ईश्वर का प्रेम और कृपा, लेकिन आप उसे सुन नहीं सकते क्योंकि आपने अपना रिसीवर जानबूझकर हथौड़े से तोड़ दिया है।
ओहो, मतलब अगर कोई इस बात से डरा हुआ है कि उसने ये पाप कर दिया है, तो उसका यही डर साबित करता है कि उसका रिसीवर अभी टूटा नहीं है।
बिल्कुल सही पकड़े। अगर एंटीना टूट गया होता तो उसे अपराध बोध या डर महसूस ही नहीं होता, वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका होता।
तो असली खतरा तब है जब इंसान पूरी तरह से उदासीन हो जाए, मतलब उसे कोई फर्क ही ना पड़े।
जी, स्रोतों में क्रिस्टोफर डॉकिंस या क्रिस्टोफर हिचिन्स जैसे विचारकों के अहंकार का उदाहरण दिया गया है।
हाँ, यह मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस स्थिति को समझना है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी मान्यताओं में इतना कठोर हो जाता है कि वो अपनी चेतना के दरवाजे ही बंद कर लेता है।
बिल्कुल, इसी अहंकार को रिसीवर तोड़ना कहा गया है।
ये सच में खौफनाक है। खैर, यहूदा के इस पतन को समझने के बाद आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलें।
हाँ, यशाया अध्याय 23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की महाशक्तियों की बात करते हैं।
सोर और सिदोन की बात हो रही ना यहाँ?
जी, जिन्हें हम फोनीशियन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन दुनिया की व्यापारिक महाशक्तियां थीं। वे भूमध्य सागर के व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे और बहुत अमीर थे।
मतलब आज के अमेज़न की तरह।
बिल्कुल, लेकिन यशाया उनके पतन की भविष्यवाणी करते हैं, और जब उनके ढहने की खबर दूर स्पेन, जिसे तर्शीश कहा गया है, वहां तक पहुंचती है तो व्यापारी स्तब्ध रह जाते हैं।
तो इस सबका अर्थ क्या है? ये पतन क्यों हुआ?
डॉक्टर रोजवर्ल्ट के अनुसार इसका उद्देश्य है मानव के झूठे गौरव और घमंड को तोड़ना। इतिहास केवल राजनीतिक शक्ति का परिणाम नहीं है, ईश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव की पापपूर्ण प्रवृत्तियों के बीच से भी काम करता है।
इस बात को साबित करने के लिए स्रोत में शेबना और एलियाकीम की तुलना की गई है।
हाँ, शेबना एक शक्तिशाली मंत्री था जो अपने लिए एक शानदार मकबरा बना रहा था
ताकि लोग उसे याद रखें,
लेकिन वो विदेश में बंदी बनाकर मारा गया। उसकी जगह एलियाकीम को मिली, जो एक मजबूत खूंटी की तरह था।
लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि वो मजबूत खूंटी भी अंततः गिर जाएगी।
जी, इसका मतलब ये है कि ईश्वर का काम ईमानदारी से करने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की नजरों में सफलता की गारंटी मिलेगी।
डॉक्टर ओसवाल्ट ने अपना खुद का अनुभव भी तो साझा किया इसमें।
हाँ, एसबरी कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में अपना व्यक्तिगत अनुभव। मानवीय मानकों के अनुसार उनका कार्यकाल बहुत सफल नहीं माना गया, लेकिन असली बात निष्ठा की है, परिणामों की नहीं।
तो मतलब सच्चा इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये उन चंद लोगों द्वारा आगे बढ़ता है जो सत्य और विश्वास से जुड़े रहते हैं,
जिसे सोफिया पेरिनिस या सनातन सत्य का धागा कहा गया है।
बिल्कुल, अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो यहूदा के झूठे जश्न से लेकर सोर के बंदरगाहों के पतन तक ये हमें बताता है कि इंसान की दीवारें या संपत्ति अंततः शून्य है।
एकदम शून्य।
डॉक्टर ओसवाल्ट का ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विश्लेषण वाकई बहुत गहरा है। लेकिन चलते चलते मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ।
जी बताइए।
हमने देखा कि कैसे अपनी खुद की बनाई दीवारों पर भरोसा करना एक जाल है, और कैसे लोग अपने रेडियो रिसीवर को तोड़ देते हैं। लेकिन जरा आज के डिजिटल युग के बारे में सोचिए।
अच्छा,
क्या आज हम सिर्फ अपने रिसीवर को तोड़ रहे हैं, या हम सूचनाओं और शोर के एक अंतहीन फीड से उसे जानबूझकर दबा रहे हैं?
ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है।
अगर यशाया आज हमारी दर्शन की घाटी को देखते तो शायद वे हमें सिर्फ दौलत पर भरोसा करने के प्रति ही चेतावनी ना देते, बल्कि हमारे अपने उस डेटा और ज्ञान के अहंकार पर भी सवाल उठाते, जहां हम एक फुल हार्ड ड्राइव को एक भरी पूरी आत्मा समझ बैठे।
बिल्कुल,
जब पूरी दुनिया इतनी जोर से चिल्ला रही हो तो हम सही फ्रीक्वेंसी पे वापस कैसे ट्यून कर सकते हैं? इस पर विचार करें।